عليكم ورحمة الله وبركاته. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعمة بالشكر، نحمده على على بلائه ونستعين، نحمده كما على آلائه كما نحمده على بلائه، ونستعينه على نفوس البطاعة ما أمرت به، الصراع إلى ما نهيت عنه، ونستغفره مما أحاط به علمه وأحصى كتابه، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا طبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه ارتبطت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. عزیزان گرامی، جمعہ کا روز ہے، شب جمعہ ہے، جمعہ کے دن مولا تشریف لانے والے ہیں، وہ جو دن آنے والا ہے جمعہ ہے، اللہ کرے کل ہی کا جمعہ ہو جائے تاکہ انسانیت جو سسکیاں لے رہی ختم ہو جائے، اور انسانیت کا جو مقام ہے عدالت و برابری ہے، قسط عدالت ہے، انشاءاللہ سب کو انصاف ملے، اور اس کے ساتھ ہم بھی ذہنی اور جسمانی تیاری کریں اس حکومت جہانی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اور پھر یہ قرآن دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اما بعد، فقد قال الله وهو اصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عزیزان گرامی، آج ہماری گفتگو اخلاق اسلامی، مورل سائنس ان اسلام سے متعلق ہے، اور ہم لوگ کئی بحثوں کو کر چکے ہیں. گزشتہ جو گفتگو ہوئی ہے، اخلاقی ذمہ داری کی شرطیں کیا ہیں، یعنی انسان پر جو ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، یہ ذمہ داری تم بات ڈالی جاتی ہے، اس پر کون سی شرطیں لاگو ہیں جو ذمہ داری کے لیے لازمی ہیں. ان میں سے سب سے پہلے بلوغ ہے، میچورٹی. میچورٹی وہ والی نہیں ہے جی کہ مینٹل میچورٹی اور فزیکل میچورٹی اور اسی طرح سے کوئی اکنامیکل میچورٹی. بعض لوگ ہیں 50 سال ہیں، وہ مینٹلی میچور نہیں ہوتے. مسئلہ ہے بلوغ ہیں، بلوغ شرعی. بلوغ شرعی آپ سب جانتے ہیں، لڑکی 9 سال کے سن میں اور لڑکا جو ہے تقریباً ہمارے بچے 13 سے 14 سال میں عموماً بالغ ہو جاتے ہیں، جو نشانیاں بتائی گئی ہیں. جو عمل کر رہا ہے بالغ ہونا لازمی ہے، یعنی بلوغ سے پہلے جو عمل کرے گا یقیناً اس کے پرسپیکٹیو لیول اور اس کے والدین پر ذمہ داری ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس پہ ذمہ داری لاگو نہیں ہے. چنانچہ ویسٹرن کنٹری میں بھی कंट्रीज़ में भी ये आप देखते हैं कि क्रिमिनोलॉजी की बहस में यह है कि माइनर्स के लिए अलग कोर्ट्स हैं, जो जो बच्चे उनकी निगाह में 18 से कम हैं उनके लिए अलग कोर्ट है। इस्लाम ने 1400 साल पहले बुलूग की जो निशानियाँ बताई हैं वो अलग। दूसरी चीज़ जो है अक्ल हो, यानी आकिल हो, जो अमल करने वाला आकिल हो। अगर दीवाना कोई अमल करे तो जाहिर सी बात है उस पर कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। तो अक्ल भी एक शर्तों में से एक शर्त है। इल्म या इल्म के हासिल करने के इम्कानात, इस पर तफसीली बहस गुज़श्ता हमने करी, मैं रिपीट करना नहीं चाहता, सिर्फ मैं आपको फहरिस्तवार तीन बातें जो कही गई हैं बता दिया हूँ। और आज जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, कुदरत है, पावर है, एबिलिटी जिसको कहते हैं, इंसान में एबिलिटी होना चाहिए कि जिसका हुक्म उसको दिया जा रहा है उस पर वो अमल कर सके। वरना जो है अगर वो अमल नहीं कर सकता तो वो उसके ऊपर वो शरायत नहीं है, यानी इस्लाम ने उस पर कोई जिम्मेदारी डाली नहीं है। माने क्या है कुदरत के? इस शर्त की बुनियाद पर इंसान उन चीज़ों के बारे में जिनकी पाबंदी के लिए तवानाई नहीं रखता, कुव्वत नहीं रखता, अखलाकी तौर पर भी जिम्मेदार वो नहीं है। ख्वाह वो फेल को अंजाम देने के लिए हो या तर्क करने के लिए, यानी मसलन कोई चीज़ उसको करना चाहिए लेकिन कुदरत नहीं, उसके पास पावर नहीं है। कोई चीज़ नहीं करना चाहिए, उसके पास रुकने की भी पावर नहीं है। ऐसे शख्स पर क़यामत के दिन भी उसके साथ कोई सवाल जवाब नहीं होगा और काबिले तौबीक भी नहीं, उसको सज़ा भी नहीं होगी। इस्लामी उलूम में एक बहस है तकलीफ़ माला युताक। क्या ये तकलीफ़ माला युताक, यानी जितनी ताकत नहीं है, जिसमें एबिलिटीज़ नहीं है, उससे ज़्यादा तकलीफ़ देना, उससे ज़्यादा ज़िम्मेदारी लादना, उस पर अक्लमंदी नहीं है। तकलीफ़ माला युताक के उनवान के तहत महाल और खबी है, और ये मसला तमाम लोगों के नज़दीक मशहूर, ये तमाम चीज़ें जो लोग थोड़ा बहुत सेंस रखते हैं उनको मालूम है। मुसलमान हुकमा, हुकमा से मुराद हकीम, जो लोग मोरल साइंस के टीचर्स हैं, मुतकल्लमीन जो बहसे साइंस ऑफ डायलॉग में बहुत ज़्यादा वारिद हुए हैं, ने इस शर्त को साबित करने के लिए अकली पहलू, यानी ये कि नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ और फरीज़े की अंजामदेही का हुक्म देना अदालत के ख़िलाफ़ जुर्म के वाज़े मिसदाकों में से है, यानी जाकर एबिलिटी नहीं है और उससे कहा जा रहा है करो। अगर एक इंसान 10 किलो का वजन उठा सकता है, उस पर 20 किलो वजन लादा जा रहा है, ये नहीं चलता। इलाही हिकमत और खुदा के अफ़ाल के बामकसद होने की दलील यही है कि अल्लाह जो है तकलीफ़ से ज़्यादा, उसकी एबिलिटी से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। खुदा के तकवीनी और तशरीई अफ़ाल के हकीमाना होने के मसले की बिना पर यह कहा जा सकता है कि उन्हीं तकलीफ़ों को बंदों के लिए मुकर्रर करता है जिनकी नतीजे में मकसद हासिल हो सके। असल मकसद इंसान के रहनुमाई हिदायत है, लेकिन उसमें एबिलिटी ही ना हो तो वो हासिल ही नहीं हो सकेगा। ये बात वाज है कि मकासद इस सूरत में काबिल मकदूर होंगे के मुकर्रर शुदा फ़राइज़ के अंजामदेही अफराद की ताकत और तवानाई से बाहर ना हो। इस बिना पर ऐसे उमूर के लिए तकलीफ़ मुयन करना जो इंसान के लिए गैर मकदूर नामुमकिन है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो रुपये ज़िम्मेदारी डालना ये अक्लमंदी नहीं है, इन अखलाक के ख़िलाफ़ है। चुनाचे क़ुरान की आयत है ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत, सूरह बकरा की 286 आखिरी आयत का पहला टुकड़ा है। उसके बाद वो तो रब्बना ला तुआखिज़ना, इसके बाद वो दुआ भी है, आखिरी आयत है, आयत का पहला हिस्सा। खुदा किसी को तकलीफ़ नहीं देगा मगर इस कदर जितनी कि उसके पास तवानाई मौजूद हो। जो कुछ नेकी से हासिल किया इसके लिए मुफीद हो, जो कुछ बुराई से हासिल है उसके लिए नुकसानदेह। यानी लहा मा कसबत, जो भी करेगा वो कस्ब किया है उसी के लिए है, अगर नेकी कस्ब किया है उसी के लिए है, बुराई कस्ब की है उसी के लिए है। ये आयत बता रही है एक तो एबिलिटीज, दूसरे जो भी करता है उसी को रिफ्लेक्ट होने वाला है, उसी पर असरअंदाज होने वाला है। और एक आयत है वला तुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा वलदैना किताबुन यंतिकु बिलहक वहुम ला युज़लमून। हम किस ला नुकल्लिफु नफ्सन, हम ज़ात परवरदिगार कह रही है, माइटी हम हैं, हम किसी को तकलीफ़ नहीं देते मगर इस कदर जितनी कि उसके पास ताकत हो, जितनी एबिलिटी हो, अकॉर्डिंगली वी गिव देम, उसी के तब मुताबिक उसको हुक्म देते हैं। हमारे पास वो किताब है जो हक बयान करती है, ना कुरान जो हक बयान करता है, और उस पर किसी पर जुल्म होने वाला नहीं। इन्नल्लाह ला यज़लमु मिथ्क़ाल ज़र्रा, अल्लाह ज़र्रा बराबर भी, मिथ्क़ाल ज़र्रा, ज़र्रा बराबर भी किसी को तकलीफ़ नहीं देता। इस बात के अलावा कि इंसान को असल फ़ेल के अंजामदही पर क़ादिर होना चाहिए, असले अंजाम दही पर कादिर होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है कि अगर मुकल्लफ के लिए फ़रीज़ा हासिल करने की कुदरत रखता हो, अगर अगर मुकल्लफ के लिए फरीज़े को अंजाम देने में वसाइल मुकदमात फराहम करने की ज़रूरत हो, तो मुकल्लफ के लिए ज़रूरी कि उसके मुकदमात को भी हासिल करने की कुदरत रखता हो। समझिए, ज़रा सा मिसाल दूँगा, ये ज़रा सा इबारत को समझिए। मसलन अगर कोई शख्स को हुक्म दिया जा रहा है कि नमाज का हुक्म है, नमाज वाजिब है, ठीक, और नमाज कब वाजिब होती, जब वो बालिग होता है, बालिग पे वाजिब है, आकिल पे वाजिब है, जैसे ही बालिग हुआ उस पर वाजिब है। जहाँ नमाज वाजिब है, मुकद्दमात नमाज भी, मसलन मुकद्दमात नमाज में तहारत है, इंसान का जिस्म पाक हो, लिबास पाक हो, मुबाह हो वगैरह तफसीली मौजूद है, ये मुकदमात के अदा करने में भी उसमें कुव्वत हो, कुदरत हो, समझिए अच्छे तरह से, इस्लाम कितनी बारीकी पे काम करता है। न सिर्फ वाजिबात, न सिर्फ मुहर्रमात वाजिब की अदायगी, बल्कि मुहर्रम से दूरी के लिए उसके मुकदमात भी जो हैं उस पर तकलीफ़ मालाई उदाग ना हो, यानी उसकी एबिलिटी से बाहर ना हो। इससे पता चलता है कि दीन मुबीन इस्लाम इंसान को इतना आज़ाद और आज़ादी के साथ इंसान पर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी डालता है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू दी एबिलिटीज़ हैं, उसके ताकत के मुताबिक है। हर एक की ताकत अलग अलग है, इल्मी लिहाज से, फ़िक्री लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से वगैरह। इस बात के अलावा कि इंसान को असल फ़ेल की अंजामदही में कादिर होना चाहिए, असल जो कि यानी इंसान, मसला नमाज पढ़ना वाजिब है, रोज़ा रखना वाजिब है, एक आदमी रोज़ा रखने की कुदरत नहीं रखता है। अभी मेरे पास किसी ने रमज़ान के महीने में ये बात बताई थी कि बाज़ ऐसे मकाम आते हैं बहुत जहाँ पर लंबे लंबे रोज़े हैं, जैसे कनाडा में तकरीबन 17-18 घंटे का रोज़ा था, बाज़ के 20 घंटे, बाज़ के 22 घंटों के भी रोज़े हैं। तो किसी मौलवी साहब ने ये बयान किया कि ऐसी जगह रोज़ा रखना ही वाजिब नहीं है, ऐसा नहीं है, इस तरह से नहीं है। जिसको एबिलिटी है सबको सबको रोज़ा रखना है, जहाँ तक रख के रख सके रखना है। मसलन छोटे बच्चे 9 साल की अभी बच्ची जो है वो बालिग हुई उसी रमज़ान में, और वह एज के अतबार से, एबिलिटी के अतबार से उतनी कुदरत नहीं रखती है। इसके माने नहीं कि सुबह से ही नाश्ता शुरू कर दे इसलिए कुदरत नहीं रखते, ना, बल्कि नीयत करे रोज़ा रखे, यहाँ तक के जब ये महसूस करे कि अब उसकी ताकत से बाला है तो वो तोड़ सकती है, खोल सकती है, उसके कज़ा जो है वाजिब है। बाज़ लोग इसको नए मसाइल के तौर पर बयान किए, नए मसाइल नहीं है, पुराने ही मसाइल हैं। और ये भी जो जुरत कर देना कि ऐसे लोगों पर रोज़ा नहीं है, ये भी नहीं है। अगर कोई शख्स जिस पर तकलीफ़ वारिद हुई है, जिस पर वाजिबात वारिद हुए हैं, जिस पर वाजिब हुआ है कि नमाज पढ़ना है, और नमाज पढ़ने के लिए जो मुकदमात चाहिए, लिबास वगैरह के पाक होना, जिस्म का पाक होना, और इस मसले में भी वो मकदूर नहीं है, ताकत उसमें नहीं है, तो उसमें तकलीफ़ नहीं है। इसीलिए इस कुदरत की तवानाई हासिल करने में भी को ये नहीं कोताही ना करना हो। मसलन मिसाल के तौर पर तयम्मुम करने का हुक्म है, कहाँ पर? जब पानी, कई शर्तें, मैं पूरे शर्तों में जाऊँगा तो फिर असल बहस से हट जाऊँगा। उनमें से एक ये है कि पानी मुहैया हो, वो पानी नहीं है वहाँ पर। इसके माने कि चूंकि पानी नहीं है, अभी से मैं तयम्मुम कर लूँ ना, पानी की तलाश में निकलूँ जब तक कि मैं नमाज के वक्त तक कोशिशें करूं कि किसी तरह से पानी मिल जाए ताकि वजू करूं, नमाज। अब कज़ा होने के इम्कान जब शुरू हो जाते हैं तब जो है वो तयम्मुम करेगा। यह है कि मरीज़ है वो शराइत जानते हैं। तो इसके माने कि कोशिश करना मुकल्लफ को, यानी जिस पर तकलीफ़ है, जिस पर वाजिब हुआ है, जिस पर फ़राइज़ अंजाम देने के फ़राइज़ अदा करने का वजूब लागू हुआ है, उसका तलाश करना, उसका कोशिश करना ज़रूरी है। मुझे मालूम नहीं था, मुझे ये नहीं चलता। मैंने मिसाल दी थी, ड्राइव कर रहा हूँ कनाडा में और पुलिस आके रोकी, मैंने कहा कि कानून मालूम नहीं था। उसने कहा कि टू हेल विद यू, तुम बैठे क्यों स्टेयरिंग पे? स्टेयरिंग पे बैठना इस बात की दलील है कि तुम सब चीज़ें इम्तिहान दे चुके हैं, कि कवानीन से वाकिफ हो। तो मालूम है कोशिश होनी चाहिए इंसान को, मालूमात के हासिल करने की, कुव्वत के हासिल करने की। उसी तरह से आज मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा अपना दिफा नहीं कर सक रही है, अपने ही अंदर ऐसे कुल्हाड़े तैयार किए गए हैं, ऐसे एक्सेस तैयार कर दिए गए हैं कि जो अपने ही पैरों पर, अपने ही इस्लाम पर वो मार रहे हैं। जैसे आप देखें ये गवर्नमेंट जो है, जिसमें से मिसाल सऊदीया है, लानतुल्लाह अलैहिम, ये तमाम गवर्नमेंट है जो बिल्कुल किसके हैं, बनाए हुए दूसरों के हैं। अब इनको क्या करना चाहिए? मुसलमानों को खामोश बैठना चाहिए? ना, कुरान कहते हैं वअद्दु लहुम मस्ततअतु मिन कुव्वति मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुवुल्लाह वअदुवुकुम वआखरीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाह यअलमुहुम वमा तुन्फिकु मिन शैइन फी सबीलिल्लाह युवफ्फ इलैकुम वअन्तुम ला तुज़लमून। ईमान वालों से मुखातब है ज़ात पर, तुम सब उनके मुकाबले के लिए हर मुमकिन ताकत, जंगी सामान, घोड़ों की सब बंदी का इंतज़ाम करो। वाहिदू लहुम मस्ततअतुम। आज मुस्लिम उम्मा कितनी है भाई? 1.7 बिलियन, 1.8 बिलियन, 59 मुस्लिम कंट्रीज हैं। अगर ये मुत्तहिद होकर के अपना ही दिफाई निज़ाम तैयार करें तो उनको किसी से भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने रिसोर्सेस आपके पास मौजूद हैं। हर साल अपनी दिफा, कौन है दुश्मन भाई इसका? हिजाज का दुश्मन, सऊदी का दुश्मन कौन है? कोई भी नहीं है, अपने आप का दुश्मन है। हर साल 20 बिलियन कौन है? दुनिया की हुकूमतों को, दुनिया की बातिल हुकूमतों को कुव्वत देने के लिए, उनकी फैक्ट्रीज को चलाने के लिए, उनकी इकोनॉमी को चलाने के लिए हम बुद्धू बन रहे हैं। कुरान हुक्म देता है ना, ताकत का, एबिलिटी का ना होना खुद एक हीला नहीं बन सकता। एबिलिटी को हासिल करना चाहिए, हासिल कीजिए। अगर नहीं किया तो फिर है आपको जवाब भी देना है। तो ये कह देना कि चूंकि एबिलिटी मुझ में नहीं थी इसलिए मैंने नहीं किया, ये नहीं होता ना। ट्राई टू अटेन इट, हमारा फरीजा है कि उसको अटेन करें। और उम्मीद है कि ये बात वाज़े हो गई है। जहाँ बुलूग शर्त है, जहाँ अक्ल शर्त है, जहाँ पर यह शर्त है कि मुकल्लफ यानी जिस पर तकलीफ़ है, जिस पर ज़िम्मेदारी है, इल्म का हासिल करना भी उस पर लाजमी है, यानी मालूमात का। अब चुनांचे अब तमाम मराज के तौज़ीह मसाइल को उठा के देखिए, इब्तदाई मसाइल में लिखा हुआ है जितनी भी ज़रूरी मसाइल है उनके जानना वाजिब है। कितने लोग हैं हम लोगों में से? हाउ मेनी ऑफ अस अवेयर ऑफ द मसाइल? मैम जो आज सवाल करेंगे तो बगले झाँकेंगे, मालूम ही नहीं है। जब बेसिक्स मालूम नहीं है तो फिर वो बड़ी बातें कहाँ से मालूम होंगी? चूँकि मालूम नहीं इसलिए वो तकलीफ़ नहीं उन पर ना, मालिम हास इल्म हासिल करना लाजमी है। उसके बाद आज की बहस में हमने कुदरत के मसले में ये बहस की कि इंसान में ज़ात परवरदिगार तकलीफ़ माला युताक, गिवन एबिलिटी के एतबार से जो कुदरत दी है ज़ात परवरदिगार ने, उसके मुताबिक ज़ात परवरदिगार हमसे मुआखजा करेगा, सवाल करेगा। लेकिन इसके माना ये नहीं है कि हम जो हैं उसको तलाश करके हासिल ना करें, ये नहीं हो सकता। आपको तलाश करना पड़ेगा, आपको हासिल करना ही पड़ेगा। बात वाज़े हो चुकी होगी और ये मिसालों के ज़रिए से। इज़्तिरार यानी मजबूरी का ना होना। बहुत से मकामात पर इंसान मुज़्तर है, मुज़्तर यानी मजबूर है। मसलन बहुत से लोग जो हैं, बहुत से लोग नहीं, कुछ लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं इसी दुनिया में, और उनके साथ तोशा है, साथ खाने के लिए चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे भी मौके आ जाते हैं खाने के लिए कुछ बाकी नहीं है। अब जो बाकी है वो मीत है, मसलन खुदा न खास्ता वो गोश्त है जो हलाल नहीं है, ऐसी सूरत में खा सकते हैं, जी खा सकते हैं। नहीं है कि हम मार्केट में जाएं, हम तो कनाडा में, हम तो वेस्टर्न कंट्री हैं, बस यहाँ पपा को साफ नज़र आता है, हलाल दुकान में तो बहुत गंदगी है, यहाँ पे खा लें। ना, ऐसा नहीं है। इज़्तिरार के माने मजबूरी। तो इसके माने इस्लाम ने क्या, किस बात की तरफ अहमियत दी है? अहमियत दी है जान के बचाने की अहमियत है। जान, इंसान की जान की कीमत है, और जान के बचाने के लिए उसको हलाल खाना ही चाहिए, उसकी ग़िज़ा सही होनी चाहिए। लेकिन बाज़ ऐसे मकामात हैं जहाँ पर वो अपने आप को बचा नहीं सकता, मजबूर हो जाता है। तो जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करने की इजाज़त है उसको, टू सर्वाइव। मसलन एक ऐसे मकाम पर पहुँचे जहाँ हराम के अलावा कुछ भी नहीं है, उसे मालूम है कि चंद घंटों बाद वो पहुँचेगा ऐसे मकाम पर जहाँ हलाल है, तो सब्र करेगा, कोशिश करेगा उसको उस मकाम पर जल्दी जल्दी पहुँचे। लेकिन ये मालूम है कि नहीं पहुंच पाएगा, वहाँ तक पहुँचने तक मौत वाक़ हो जाएगी, क्योंकि जिस्म का बचाना, इंसान का बचाना लाजिमी है, वो मुर्दार भी खाने की इजाज़त है उसको। हो सकता है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह पोर्क हैम भी, हालांकि हराम चीज़ें हैं, क्योंकि मजबूर ये, इसलिए इजाज़त है। इस्तरारी मजबूरी बहुत सी जगहों पर अखलाकी ज़िम्मेदारियों को ख़त्म कर देता है, यानी बहुत से मकामात हैं मुज़्तर को जो है ये अखलाकी ज़िम्मेदारी निकल जाती है। मुज़्तर उस इंसान को कहते हैं जिसे मुश्किल हालात का सामना होता है, जैसे ये कि कोई इंसान किसी बयाबान में आज़ीज़ है बयाबान पहुँचा, उसके पास खाने को कुछ नहीं है, जान बचाना लाजिमी है, तो वो मीठा भी जो हराम में खा सकता है इतना जितना कि उसकी जान बच जाए। छठवीं शर्त है इकराह व इजबार का ना होना, और इस पर भी बहुत अच्छी तरह से समझना, आगे बढ़े। मजबूर नहीं होना, इकराह उस वक्त वजूद में आता है जब इंसान को किसी दूसरे जाबिर इंसान या गुरोह के जरिए धमकी दी जाती है, यहीं पर जो है वो तकिया वगैरह, जान माल इर्ज, जान यानी इंसान की जान की बहुत अहमियत है। मिसाल के तौर पर नामहरम को हाथ नहीं लगा सकता इंसान, नहीं लगा सकता, नामहरम हराम है, निगाह भी नहीं कर सकते, जो बेगैरत है वो देखते हैं, निगाह करते हैं। लेकिन वही नामहरम अगर कोई औरत किसी रिवीन में, किसी नदी में, किसी दरिया में डूब रही है, उसको बचाना है, हदफ क्या है उस इंसान के बचाने का था, तो उस बचाने के लिए एक चीज़ हो रही है वो हराम हो रहा है, लेकिन चूंकि जान की अहमियत है वहाँ पर शरीयत इजाज़त देती है, वो भी उसके इंटेंशंस वगैरह उसमें बहुत ज़्यादा अखलाकी ज़िम्मेदारी के माने मॉरली वो इतना हाई हो। अगर कोई शख्स गन के पॉइंट पर यह कहे कि जो है आप जो हैं बोलें भाई फलां फलां को मानिए, फलां फलां का इनकार कीजिए, चुनाचे आज दाइश जो है गन पॉइंट पर जो है सबको मजबूर कर रही है। इस दी जो इराक़ की बहुत बड़ी पुरानी नस्लें कौम मौजूद थी उनको बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, उसी तरह से क्रिश्चियनिटी मुसल में हर एक मजहब पर हमला हुआ, दुनिया देख रही है। बहरहाल एक अलग ही बहस है, वो लोग मजबूर कर रहे हैं। ऐसे मकाम पे क्या होगा? मुमकिन है कि आपको इजबारन वो काम अंजाम दें जो शरीयत के खिलाफ है, दीन के खिलाफ है, अकल के खिलाफ है, लेकिन चूंकि मजबूर हो चुका है, वह इजबारी कैफियत में है। हदीस रफा, हदीस रफा के माने मुख्तलिफ, जिनमें से इंसान के लिए तकलीफ और जिम्मेदारी नहीं है, उन उमूर में से एक मस्तकरहू अलैह, यानी वो उमूर जिन्हें अंजाम देने या तर्क करने के लिए मजबूर किया जाए। मा इस्तकरहू अलैह, कोई गन पॉइंट पे कह रहा है सुअर का गोश्त खाओ नहीं तो मार दूंगा, कोई गन पॉइंट पे कह रहा है इसको कत्ल करो नहीं तो मार दूंगा, बहुत से ऐसे मजबूरियां देखते हैं, नजर आ रही हैं बहुत से ज्यादा। आज जो वहशियाना अमल हम 1400 साल पहले का देखते थे, आज पूरा देख रहे हैं। इंसान उससे उतर चुका है, इंसानियत से उतर चुका है। क्या करना चाहिए ऐसे मौके पर? इजबार है, मजबूर है, कुछ और रास्ता उसके पास नहीं है, ही हैज़ टू डू इट। इस्तेरार के लिए दो बुनियादी अस्बाब वाबस्ता हैं, यानी इस तरह ये मजबूरी के लिए दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जुड़े हुए हैं। पहला, ऐसा सदमा, ऐसा नुकसान जिसने जिससे बचना ज़रूरी है। मसलन जिस्म पर सदमा, माल पर सदमा, इर्ज पर, इर्ज यानी इज्जत पर इंसान की, उसने बचना ज़रूरी है। अक्ल ये कहती है कि इन तीन चीज़ों को बचाना चाहिए। दूसरे, इस तकलीफ़ और वजीफे की अहमियत के इंसान इकरा इस्तार की बुनियाद पर इसे अंजाम देने से परहेज़ करता है, यानी वो नहीं चाहता ऐसा काम अंजाम दे जो गैर शरीय है, लेकिन उसको इन हालात में ला करके मजबूर कर दिया कि वो करना ही पड़ रहा है, तो क्या करे वो इंसान? ये इजबार है, इकराह वो इजबार है। और इस सिलसिले में हम सब की जिम्मेदारी है कि एक ऐसा मुआशरा तश्कील हो इंसानी, जिसमें फ्रीडम, इकराह ना हो। ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यना रुश्द मिन अलगई, दीन में कोई इकराह नहीं है। तो इन हालात में भी उसके अमल की जिम्मेदारी सरकमस्टेंसेस के एतबार से रखी गई है। ये इस्लामी मोरल साइंस की इतनी बारीक बीनी है कि वो आकिल है, अकलमंद है, बालिग है, और इल्म रखने की ताकत, वो इल्म भी रखता है, जानता है कि ये चीज़ हलाल है या हराम है, और कुदरत भी रखता है अंजाम देने की, कुदरत भी रखता है रुक जाने की, यानी नहीं अनिल मुनकर की, बुराइयों से रोक जाने, अपने आप को रोकने की, लेकिन नहीं अंजाम दे रहा है। उस पर इजरा मजबूर किया जा रहा है कि यू हैव टू डू दिस, तो कोई रास्ता नहीं है। ऐसे मौक़ों पर इंसानी विजदान ये कंपेल करती है कि तुम अंजाम दो, ताकि तुम्हारी हयात, तुम्हारा माल, तुम्हारे इर्ज, तुम्हारी इज्जत घाटे में ना हो। आई बिगिन इन द नेम ऑफ अल्लाह द ग्रेशियस द मर्सीफुल। वी आर टॉकिंग अबाउट द कुरानिक मॉरल साइंस ऑफ इन इस्लाम, मॉरल साइंस इन इस्लाम। द आया विच आई रिसाइटेड, आई रिसाइटिंग फॉर यू इज फ्रॉम सूरतुल बकरा, इज सेकेंड चैप्टर, बिगेस्ट चैप्टर ऑफ द कुरान, आया नंबर 262। As for those who spend their property in the way of Allah fi sabilillah, alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, then do not follow up what they have spent with reproach or injury. Sometimes we give charity, but we are watchful, and always we taunt that person, I have given to you, I have, is not right. If we do it, that becomes null and void. And such people, those who follow these rules, they shall have their reward from their Lord, from Allah subhanahu wa ta'ala. And they shall have no fear, nor shall they grieve. One of the causes of fear is, Quran is saying, lack of infaq. In regards to this, we were talking about the conditions in order to fulfill the moral responsibilities. What are the conditions? Last week we did discuss one of the basic conditions is bulugh, is maturity, shar'i maturity, which is for the girls is 9, for the boys, our Eastern culture boy, 13 to 14 years, because of the signs which has been described in Sharia. If those signs are not appearing, then the 15 years for the boys. The bulugh is the condition. Number 2 is aql. A person should be in sound reasoning. A person who is mad, who doesn't have any mind, brain, he has no responsibilities. Number 3 is there should be possibility of acquiring knowledge about that particular masala that I was telling this in the all the masail of Maraji, majority of them, they in the basic beginning, they say the basics of Islam, all the rulings about day-to-day activities of a Muslim man or woman, we have to know those things. So there should be a circumstances available to know those masail, those rulings. And one has to struggle for it. He cannot say, I didn't know. No, it's not going to work out that way. You have to search for that. Today we are discussing about qudrat, a power and ability to act upon the rulings. Allah has not given anyone a command beyond the capacity. لَا يَكُلَّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا وُسْعَهَا إِلَّا مَا أَتَاهَا. Allah subhanahu wa ta'ala has not given a command which is beyond the ability. So fasting is ability. A person cannot say, because I never had the ability, that's why I could not do. No, he has to attain the ability. For example, I was giving example of the Muslim Ummah, status of Muslim Ummah, 1.8 billion, close to 2 billion Muslims, and so much resources, and we need to attain the ability to defend ourselves, not defend one family like Saud or kings or Shiuch, defending the values of Islam with united front. لا شرقية ولا غربية بل الإسلام لا سنية ولا شيعة بل الإسلام. It is incumbent upon all of us to attain such ability. So first thing is, we have to understand those who are working to discord between Muslim Ummah, separate Muslim Ummah, put a seed of kufr and shirk and etc. They have nothing to do with Islam. The first thing is, we have to have awareness. Marathon of awareness. Imam Khomeini rahmatullah said, those who talk about Shia Sunni, they neither belongs to Shia Sunni. And you are talking about where to put in namaz their hands, either on your chest or bottom or open. You are talking about this, you are arguing, your argument about this, and the enemies, they are cutting your hands off. So that's why Quran says, وَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوُّ اللَّهِ. Surah Al-Anfal, 8th chapter, ayah number 60. If you are watching and you have Quran with you, open this. Allah subhanahu wa ta'ala is commanding the believers to attain such an ability to defend yourself and your country. Not defending with the weapons of others. No, you make yourself. When we see the history of Islam, Prophet Muhammad at the beginning, 68 minor or major wars. At the beginning, the people used to go bring like arrow and sword, maybe from Yemen or from other countries. But Prophet has sent some of the people to attain the ability to make it. Then they themselves, they can make it. This is very important for وَعِدُّ لَهُمْ أَسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةِ. You cannot say, I cannot defend myself. No, you should not. Don't be a chicken. Be a man. How can you be a man? Prepare yourself. I don't have anything but to give example. After the revolution of Islamic Republic of Iran, by removing the most brutal system which was backed by the Western countries, Shah of Iran, Lanatullah Alayhi, Imam Khomeini brought a revolution and they wanted to smash it. They brought wars and wars, and again, 8 years of wars. What has happened? Now Iran has gained the ability to defend themselves. وَعِدُّوا لَهُمْ أَسْتَطَعْتُ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ. This ayah is compelling upon us to become stronger. And they did so. One of the biggest thing which has been attained in this, in Islamic Republic of Iran, that is peace. There is harmony between all groups. In Iran there are Jewish community are there, Zoroastrians are there, Christians are there, Sunnis are there. Among Sunnis there are so many school of thoughts are there. They attain this. And they said, we are peace-loving country. If you look at us down, we will not going to leave you alone. If you try to smash us, we will learn. That right, all of us. So, ability to gain the power is a moral ability. I cannot say, I never had the power, that's why I became surrendered to the any other system, which is Batil system. No, you have to attain. And number five is, there should not be any majburi, is the terror. Maybe a circumstances, you don't have any way but to do it. You're bound to do it. You are in a jungle and you are out of food, you don't have nothing to eat. For the survival, you have to eat haram. So you that much you consume so that you can safeguard your life until you reach to the Allah. There should not be any kind of majburi. Is there are means there should not be any kind of inabilities to act upon the wajibat. And number six, there should not be ikrah. What is the meaning of ikrah? Ikrah means someone is compelling you to do something which is against the Sharia. On gunpoint, many things we hear in day-to-day our lives. And you know that this is according to Sharia, what they are asking is not right. And you have to do it to protect your life. Life is very important in Islam. To extend Quran says giving one person life and giving life to all human beings. Saving one life equals saving all lives of human beings. 1 7 billion. One life is equal to 7 billion. And taking out one life is killing 7 billions. It's not easy. Islam is not something you go and kill anyway. No, Islam has not given such a freehold permission to anyone, any groups. Instead, Islam has given the message of यूनिटी वातसम बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफरकू एंड दोज़ हु से अगेंस्ट सच आयत नथिंग टू डू विद इस्लाम नथिंग टू डू विद कुरान. I hope we are following. I hope we are focusing. Yes, it is very important to protect the body and the property and the honor. The three protection is very important. And you have been put in a situation, you cannot safeguard your body and your honor and your wealth. There Islam says, yes, morally you can do it because you have been put into such a situation. And some people might argue in some of the cases, like Yazid's army, they were brought, no, they had freedom to come out of that. And that freedom has been explored by the member, some of the members of the, on top of the list is Hur. And he did. He showed to the world, yes, kill me, do whatever it is, but I have that ability to get out of there and join the army of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. So ikrah, there should not be a problematic situation where we cannot protect ourselves. That doesn't mean Islam is giving free hold to do whatever you want. No. You have to explore it until the last moment. Number seven is qasdu amd. Qasd is intention. In a deliberate intention to do it. All the action should be doing with the intention. Kullumra in manava. Nothing but our intentions. Jiska amal ho begharaz, uski jaza kuch aur hai. If our intention is pure, the reward is more. This amd qasd. Qasd is with the intention. Amd is deliberately doing something. If anyone is not following Islam deliberately and intentionally, he has to render, he or she has to render account. If anyone leaves things lack, maybe he has forgotten. So for them it's completely different situation. He has no ability, completely different situation. But knowingly living the fara'id of Allah subhanahu wa ta'ala, the act of incumbent acts, knowingly doing what is being prohibited, knowingly, with intention, for such a person, he has to face the consequences. Brothers and sisters, in order to understand the philosophy behind all these conditions, maybe philosophies, one thing is common in all is reasoning. Allah subhanahu wa ta'ala instinctively has given so many things. That's why it has been said, prophethood is of two kind. One is inner, and hidayat is two kind, guidance is two kind. One is inner, another is outer. What is inner hidayat? What is outer hidayat? Inner hidayat guidance is, inner guidance is aql, reasoning. Allah subhanahu wa ta'ala says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa shamsi wa duhaha wal qamari idha, by 11, shams or qamar, وَنَفْسِيَ وَمَا سَوَّاهَا 11 times اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوائے بائی دیس بائی دیس بائی دیس بائی دیس وَنَفْسِيَ وَمَا سَوَّاهَا A human soul, human self, which has been balanced in majority, because there are minor cases, there are imbalances are there. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَى When we have khatarat, something which comes in our mind, there are also categories of khatarat, خطرات ان تخطر علی فاجول فی طلب البلدان ان دعائے عشاء ویری سائڈ سم آف دا تھاٹس کمس ان اور مائنڈ اکارڈنگلی وی گو رننگ فرام ون کنٹری ٹو دی ادر ادر کنٹری ٹو دی ادر فار اور لائیولیہڈ ہز اسٹرگل از گڈ دیٹ از خطرات اسٹرانگر دین خطرات از الہام Ilham is heavenly inspiration. Allah subhanahu wa ta'ala says, the ability which has been given is balance ability. Wa nafsin wa ma sawwaha. Then fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Nowadays, few things are becoming fashion, even some of the Muslim boys and girls. I don't believe in religion. I'm an atheist. Astaghfirullah Rabbi. Even those who don't believe in religion, those who say we are atheists, if you ask them, how about stealing someone's property? He says, no, it's not right. Why not right? You don't believe in religion. Although I don't believe in religion, that doesn't mean I don't believe in the basic morals of humanity. Lying. No, lying is not right. So you don't have religion. So what? Lying is not right. Stealing is not right. Doing injustice to others is not right. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَى Allah subhanahu wa ta'ala says, we have guided what is right and what is wrong to the soul of human. If you have basic understanding of life, which is, we call it common sense. That common sense expels us not to do something which is not right to do. Compels us to do things which is right to do. Same person who says, I don't believe in religion, is a truth, he says, very, very good. Lying is not good. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَى Then قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّى This is the moral value. This is the moral sense of Islam. If anyone protecting the self will be prosperous, will be successful, أَفْلَحَ قَدْ أَفْلَحَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحَ In Arabic, فَلَّح means a farmer. The one who grows, Hayya ala al falah, a masjid, a mosque, where growth has to be there. What kind of growth? Number one, my mental growth. Growth of love. Growth of unity. Not a masjid is saying, this masjid belongs to so and so, no one has the right to enter. Masjid belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing to do with The moral science in Islam touches the deepest roots, which gives us clear guidance. With these roots, one can follow, and this is not something, a law of the book. It is the law of inner nature. أَقُلُ وَقَوْلِي وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ